ऑस्ट्रेलिया में कोयले और यूरेनियम के भंडारों के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एलएनजी या लिक्विफाइड नेचुरल गैस के भी भंडार हैं। दूसरी ओर अगर ऊर्जा की खपत की बात करें तो भारत बहुत ही बड़ा बाजार है। तो इस परिपेक्ष में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऊर्जा क्षेत्र में किस तरह के रिश्ते हैं, इसी विषय में और जानने के लिए सबसे पहले हमने बात की शिबोंती ददवाल के साथ, जो कि ऊर्जा से जुड़े मामलों की विश्लेषक हैं और इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो भी हैं।
ऑस्ट्रेलिया इंडिया का मेरे हिसाब से एनर्जी विल बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर्स, मजबूत होगा रिलेशनशिप सबसे एंड अक्रॉस द बोर्ड। आपको मालूम होगा कि जब पीयूष गोयल जब गए थे, हमारे ऊर्जा जो मिनिस्टर है, ही हैड 5 वर्किंग ग्रुप सेटअप किए थे ऑन वेरियस सेक्टर्स। एक है कोल, एलएनजी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड कैपेसिटी और टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो डेफिनेटली बहुत ही मजबूत है, होने वाले हैं अभी। यू नो, इंडियाज एनर्जी पॉलिसी इज अ डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी, हमें कोई एक देश के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। तो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप होंगे, लेकिन इट वॉन्ट बी दी ओनली वन। बट हाँ, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा बाकी रिलेशनशिप भी बढ़ रहे हैं, जैसे डिफेंस में, जैसे सिक्योरिटी इश्यूज, मैरिटाइम, सब एंड अदर ट्रेड इश्यूज ऑल्सो। डेफिनेटली इट विल बी वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्रीज, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसी जैसे हमारा है, इट विल नॉट बी, वी वॉन्ट बिकम डिपेंडेंट ऑन इट। और स्पेशली देखिए, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ गैस के ऊपर, पहले लॉन्ग टर्म गैस से हम शॉर्ट टर्म स्पॉट मार्केट के ऊपर हम ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं। तो अगर हमें प्रेफरेंशियल टर्म्स में अगर हमारे साथ वो बिजनेस करेंगे तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आफ्टर ऑल इंडिया, आपको मालूम है कि सबसे ऑलरेडी द थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर, बहुत जल्दी सेकेंड लार्जेस्ट हो जाएंगे शायद। तो और इनके पास अब एनर्जी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के लिए ज्यादा ऑप्शंस अभी नहीं है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी जैसे हैं। तो इंडिया इज आई थिंक अ वेरी इंपॉर्टेंट मार्केट फॉर देम, एंड आई थिंक दे विल, इट्स गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर बोथ।
वहीं हमने ANU के क्रॉफर्ड स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में अर्थशास्त्री प्रोफेसर राघवेंद्र झा से खास तौर से भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच LNG के व्यापार के बारे में पूछा।
इंडिया का LNG डिमांड बहुत जोरों से बढ़ रहा है, तो 4 सिनेरियो इंडिया ने अस्यूम किया है। और अगर आप सबसे ऑप्टिमिस्टिक सिनेरियो लीजिएगा LNG के यूज के बारे में और LNG से इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बारे में, तो अनुमान लगाया गया है कि 2047 तक 396 TWH इलेक्ट्रिसिटी जो है वो LNG से जनरेट होगा। तो एब्सोल्यूट मिनिमम में 130 होगा, और अभी तो करीब करीब 2016 का जो अगर आंकड़ा लेंगे तो करीब 25 TWH बन रहा है LNG से। इसीलिए बहुत ही शार्प इंक्रीज प्लान किया गया है LNG से पावर जनरेशन का। इसलिए और ऑस्ट्रेलिया का LNG प्राइस जो है वो काफी अच्छा है, वैसे भी अभी प्राइसेस गिरे हुए हैं नेचुरल रिसोर्सेज के, और ऑस्ट्रेलिया का LNG प्राइस जो है वो काफी कम है। 2009 में एक एग्रीमेंट हुआ था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में LNG सप्लाई को लेकर के, वो अभी रिन्यूअल उसका होने वाला है। इसलिए भी कुछ दिन पहले भारतीय सरकार के मंत्री पीयूष गोयल यहाँ आए हुए थे, उन्होंने भी LNG सप्लाई के बारे में काफी बातचीत की थी ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी से। इस कॉन्फ्रेंस के बाद मुझे लगता है कि कोई ठोस निर्णय हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया कितना LNG सप्लाई करेगा इंडिया को और किस टाइम होराइजन में सप्लाई करेगा। ये अच्छा है क्योंकि यही तो नॉन कंट्रोवर्शियल है और कार्बन के हिसाब से भी काफी लाभदायक है, कार्बन एमिशंस भी इसमें कोल से तो बहुत कम होते हैं।
वहीं अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई मामलों के विश्लेषक और यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड में प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ने बताया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए LNG के लिए एक नए बाजार के रूप में उभर कर आया है।
ऑस्ट्रेलिया में ऊर्जा का भंडार है, और आपने एक रेफरेंस दिया पर्थ में LNG की कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो ऑस्ट्रेलिया में LNG की भी काफी भारी तादाद में उपलब्धि है यहाँ पे, और LNG जो है ऑस्ट्रेलिया का एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट आइटम है। पहले ये एक्सपोर्ट ज़्यादा जापान को गया, फिर चाइना को गया, और जापान चाइना साउथ कोरिया ताइवान के साथ तो चल ही रहा है, और उसके साथ साथ भारत अभी एक एक न्यू मार्केट के रूप में सामने उभर कर आया है। अभी तक भारत की ओर इतना एलएनजी की तरफ से, एलएनजी कंपनी तरफ से इतना ध्यान नहीं गया था, क्योंकि भारत ज़्यादातर अपनी एलएनजी या गैस की रिक्वायरमेंट सब मिडल ईस्ट स्पेशली कतार से लेता रहा है। लेकिन अभी समस्या ये हो गई है कि एक तो एलएनजी की प्राइसेस वर्ल्ड मार्केट में काफ़ी नीचे आ गई है, और भारत ने कतार से जो समझौता किया था लॉन्ग टर्म पे, तो वो जो प्राइस अभी दे रहा है भारत कतार को, वो मार्केट रेट से बहुत ज़्यादा है। तो अभी इस मामले में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया इंडिया के लिए, कि ऑस्ट्रेलिया से मार्केट रेट पे स्पॉट प्राइस, जिसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस पे गैस को खरीदा जाए।
वहीं शिबोंती रे ददवाल से हमने ये भी पूछा कि जहां ऊर्जा क्षेत्र की बात हो रही है, तो क्या रेन्यूएबल एनर्जी क्षेत्र में भी दोनों देशों के बीच सहयोग देखा जा सकता है?
You know, Australia might be a very conventional energy rich country and a conventional energy exporting country. लेकिन उनका ये जो ज्यादातर जानकारी नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है कि renewable energy is also very important and they're one of the pioneers of renewable energy. तो ऑलरेडी वन ऑफ द वर्किंग ग्रुप जो सेटअप किए हैं उसमें रिन्यूएबल एनर्जी है एक, और एक ग्रिड, एज आई सेड, ग्रिड एक्सपेंशन के ऊपर टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट मॉडर्नाइजेशन भी एक वर्किंग ग्रुप है। तो डेफिनेटली ये दोनों रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर एनर्जी स्पेशली, और ग्रिड कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन भी एक है, स्मार्ट ग्रिड जैसे, तो ऑस्ट्रेलिया के बहुत एक्सपीरियंस है इसमें। तो डेफिनेटली ये अपार्ट फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ऑल्सो वी साइन द न्यूक्लियर अग्रीमेंट उनके साथ हमने साइन किए, यूरेनियम, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ यूरेनियम। डेफिनेटली ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल हो, न्यूक्लियर हो, गैस है, कोल एंड क्लीन कोल एनर्जी के ऊपर भी है वर्किंग ग्रुप एक, तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव काइंड ऑफ एनर्जी कोऑपरेशन।
वहीं प्रोफेसर पुर्णेंद्र जैन ने भी दोनों देशों के बीच रेन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र के संबंध में कहा,
हम लोग देखें कि जो तीन मीटिंग्स हुए हैं ये इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसको कि एनर्जी सिक्योरिटी डायलॉग बोलते हैं, वो तीनों मीटिंग्स में हमेशा जो है रिन्यूएबल की बात हुई है कि किस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कंपनीज या ऑस्ट्रेलिया में जो नो हाउ है, टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, उसको किस तरीके से भारत में उसका एप्लीकेशन हो सकता है, और कैसे ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भारत की कंपनीज के साथ जुड़ करके काम कर सकते हैं, तो इसमें कोई डाउट नहीं है।
भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अभी भी द्विपक्षीय व्यापार असमान है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा निर्यात होता है और भारत ज्यादा आयात करता है। इस विषय पर शिबोंती रे ददवाल का कहना था,
वेल इट ऑल्सो वुड बी अ लॉट ऑफ इट विल बी इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन इंडिया ऑल्सो, और जैसे हम भी इन्वेस्ट करेंगे वहाँ इन द कोल माइंस, इन द सेक्टर्स, वो इन्वेस्ट करेंगे यहाँ हमारे रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, शायद आगे जाके एलएनजी टर्मिनल्स में भी करेंगे, बिकॉज एलएनजी दैट इज गैस, नेचुरल गैस, लिक्विड लिक्विफाइड नेचुरल गैस में बहुत ऑलरेडी एक अग्रीमेंट साइन किए हैं, नेक्स्ट ईयर शायद उनका फर्स्ट कार्गो आएंगे एलएनजी का। और हाँ, डेफिनेटली बैलेंस ऑफ ट्रेड जैसे हमारे बाकी मिडल ईस्टर्न कंट्रीज के साथ जैसे हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड उनके फेवर में है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी होंगे क्योंकि ये रॉ मटेरियल्स वो भेजेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत सारे एडवांटेजेस भी हमें होंगे ऑस्ट्रेलिया के साथ एनर्जी कोऑपरेशन करके।